मेरे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक सूचना, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों ने जो 15 दिन की क्लासेस जो हमारी होती हैं, नेक्स्ट बैच की डेट डिक्लेयर कर दी है। हमारा जो नेक्स्ट बैच होगा वो 27 मार्च यानी कि 2022 से शुरू होगा, जो 10 अप्रैल तक चलेगा। लगातार हमारी 15 दिन की क्लासेस होती हैं, एक दिन में मिनिमम 6 घंटे की क्लासेस लगती हैं। इस तरह से 15 दिन को आप 90 आवर्स की क्लासेस कह सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और शुरू में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अभी 2000 रुपये है। और अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 2000 रुपये आपको देने होंगे, और बाद में फिर 16000 आपको देने पड़ेंगे, मतलब जो टोटल फीस है वो 18000 रुपीज़ है। तो यह सूचना है आप सबके लिए, इसे ध्यान से सुना होगा आपने, डेट दिमाग में रखें, 27 मार्च से 10 अप्रैल 15 दिन की क्लासेज। ये हमारी ऐसी क्लासेज हैं जिन हमारे पहले के क्लासेस को आप सबका बहुत ज़्यादा स्नेह और सहयोग मिला है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे कोरोना के बाद की जो दुनिया इमर्ज होने वाली है, जिसके बारे में लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि अब ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरे समाचारों को देख लेते हैं। अखबारों में आज आपने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में शायद पढ़ा हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक। 2021 का यह आ चुका है और भारत ने इसमें तरक्की की है। 2 स्थान वह ऊपर चला गया है और अब उसका स्थान हो गया है 46वां, यानी कि पहले वो 48वें स्थान पर था। और अगर हम 2015 को लें तो 2015 में हमारा स्थान काफ़ी नीचे था, हम थे 81वें स्थान पर, 80+1, और अब हम 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। देखिए, नवोन्मेष सूचकांक आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध अगर हम शब्द को लेकर के चलें तो नवाचार पर है, और भारत में आप देख रहे हैं कि नवाचार धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। सरकार भी इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, और खासकर अभी जो बात सरकार ने कही है वो ये है कि हमारा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग है, और जो अंतरिक्ष विभाग है, देखिए जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं सब साइंस से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने हमारे देश में नवोन्मेष का माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये माना जा रहा है कि इनकी कोशिश के कारण ही भारत धीरे धीरे इसमें इतना बेहतर करता जा रहा है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जहां तक पूछे जाने का सवाल है, तो खासकर मैंने देखा है कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है, इसी के बारे में प्रश्न आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसे जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। मैं रिपीट कर रहा हूं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह ज्वालामुखी को लेकर के है। एक बहुत ही भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, और ज्वालामुखी का यह विस्फोट हुआ है स्पेन में। आज के अखबारों में शायद आपने पढ़ा होगा, स्पेन का एक आइलैंड है, नाम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिविल सर्विस में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक आइलैंड है ला पाल्मा, ला पाल्मा आइलैंड, और इस आइलैंड पर जो ज्वालामुखी है उसका नाम है कम्ब्रे विएजा, कम्ब्रे विएजा। इस ज्वालामुखी में बहुत जबरदस्त तरीके का विस्फोट हुआ है, जो टेम्परेचर था लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस था, सोच करके देखिए, और ये बहुत सालों के बाद विस्फोटित हुआ है। कैलकुलेशन करके बताया गया कि 591 साल के बाद, 591 ईयर्स के बाद ये ज्वालामुखी फटा है। अब चूंकि ज्वालामुखी आपके ज्योग्राफी का हिस्सा है, और अगर आप मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि ज्वालामुखी, भूकंप, इन पर एकाध कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। हालांकि बड़ा परिचयात्मक ही होता है, लेकिन यहां मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रश्न आता है और परिचयात्मक प्रश्न ही वह क्यों ना हो, तो आप बड़े सावधानी के साथ या होशियारी के साथ कह लीजिए कि इस फैक्ट को डाल सकते हैं, तो इससे क्या है कि आपका जो उत्तर है वो थोड़ा सा ज्यादा सामयिक हो जाता है, सच पूछिए तो चमकदार हो जाता है। फ्रेंड्स, एक समझौते के बारे में आपने कल और आज के अखबारों में शायद पढ़ा होगा, ऑकस समझौता। इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ऑकस तीन देशों के जो शब्द होते हैं उनको लेकर के बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑकस समझौता। अभी हम लोग इस पर बहुत थोड़ी सी बातें ही करेंगे। यह जो समझौता है बेसिकली एक प्रकार का रक्षा समझौता है, और इस रक्षा समझौते को ऑकस नाम दिया गया है। इसके तहत ये जो तीन देश हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर के मामलों में साझेदारी करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करने के का वचन दिया, मतलब कि अमेरिका निर्माण करेगा और इसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा। ये जो परमाणु पनडुब्बी है ये बहुत जबरदस्त किस्म की पनडुब्बी है दोस्तों, ये कितनी भी तबाही मचा सकती है, इसका रखरखाव बहुत कम होता है। पारंपरिक रूप से जो पनडुब्बियां चलती हैं उनकी तुलना में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर ये पानी के अंदर है तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे कहीं पानी में पनडुब्बी मौजूद है। महीनों तक ये पानी में बकायदे डूबे रह सकती है, और मिसाइलों से जो इस पनडुब्बी में लगी हुई बहुत लंबी दूरी तक ये पनडुब्बी मार कर सकती है। जो परमाणु की बात कही गई तो इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, और ईंधन के रूप में जो बहुत ही समृद्ध यूरेनियम है उसका उपयोग किया जाता है, और इस यूरेनियम से ही बिजली पैदा की जाती है और इसी से पनडुब्बी को पावर की सप्लाई होती रहती है। ये बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि मॉडर्न पनडुब्बी है। इसको लेकर के, समझौते को लेकर के फ्रांस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन हम लोग अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। अगर चीजें और आगे बढ़ी तो डेफिनेटली हम लोग इस पर फिर बात करेंगे, और इसी को बेस बना करके बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज एक एडिटोरियल लिखा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हालांकि वो क्वाड पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप उसे एक बार अगर हो संभव हो सके तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कि किस तरीके से अब कोरोना के बाद यह सोचा जा रहा है कि इससे जो लिबरलाइजेशन का दौर है जो रहा है वो शायद बहुत ज़्यादा बाधित होगा। देखिए, जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो मेरी समझ से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आती होगी कि उदारवाद क्या है, किसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा हो तो जो हमारा ब्रिटेन का जो पीरियड रहा है, आप देखिए कि जब ब्रिटेन का भारत पर अधिकार हो गया तो किस तरीके से वो अपने यहाँ का सामान ला करके हमारे यहाँ बेचते थे और हमारे यहाँ के सामान को अपने यहाँ पहुँचाते थे, और उनका सामान हमारे यहाँ ज़्यादा बिके और हमारा सामान उनके यहाँ न बिके, इसके लिए वो टैक्स का सहारा लेते थे। ये ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है, मतलब उसके विरोध का एक पार्ट है, संरक्षणवाद हम इसे कहते हैं। बाद में जब दुनिया के देश आज़ाद हुए तो फिर ये होने लगा कि भाई खासकर जो देश उपनिवेशवादी के शिकार रहे हैं उनके यहाँ तो कोई औद्योगिक उन्नति हुई नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, तो इनको अपने यहाँ उद्योगों का विकास करना था, तो इन्होंने संरक्षणवादी नीति अपनाई, यानी कि हमारे यहाँ जो उद्योग लगेंगे हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो अलग अलग तरीकों से उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू किया। नो डाउट इससे थोड़ा बहुत उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन उसके आप यूं कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए, क्योंकि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रह गई, फिर इन देशों के पास उतनी पूंजी भी नहीं थी, इनके पास टेक्नोलॉजी की भी कमी थी, तो ये उतना आगे नहीं बढ़ सके। इसीलिए यूं कह लीजिए कि बहुत पिछड़े हुए देश धीरे धीरे फिर विकासशील में आए, उसमें से कुछ ही विकसित हो पाए, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री बने रहे। 1990 के बाद फिर दुनिया में यह हुआ कि नहीं, पूरी दुनिया के बाजार को एक दूसरे के लिए खोल देना चाहिए और पूरे के पूरे ये जो व्यापारी जगत है इसे प्रतिस्पर्धी बना देना चाहिए। ठीक है, चलिए वो सब मामला चलता रहा, तो अब क्या हुआ है, अब आप देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद का ये जो पैंडेमिक का जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में आप देखें कि पूरी दुनिया बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, लेकिन दुनिया किसी तरह से सर्वाइव करती रही। नो डाउट कि बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, आपूर्ति रुक गई, प्रोडक्शन रुक गया, माल की कमी होने लगी, ये सारे संकट दुनिया के देशों ने झेले। दुनिया के देशों ने एक दूसरे के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी, और इसी समय आप देखिए कि भारत ने भी वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, आत्मनिर्भरता का नारा दिया, हालांकि इससे पहले थोड़ा सा शुरू हो गए थे, आत्मनिर्भरता का नारा दिया कि नहीं, हमें स्वावलंबी बनना होगा, हमें अपनी चीजों को खुद देखना होगा, खुद समझना होगा, हमें इसका विकास करना होगा। तो अब ये जो बात है ये पूरी की पूरी दुनिया में फैल रही है कि नहीं नहीं हमें स्वावलंबी बनना होगा, अगर हम दूसरे देश पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो उसका हमें बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खासकर ये जो कोरोना का पीरियड रहा है, इसने लोगों को थोड़ा बहुत ये बताने और समझाने में भी सफलता हासिल की है कि आप बिना दूसरे देशों की मदद के भी काफी कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर एक नीति बना करके और सरकार उस पर काम करना शुरू करे तो हर देश अपनी ज्यादातर जरूरतें की चीजें खुद प्रोड्यूस कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है, और न केवल आप यूं कह लीजिए कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकता है बल्कि अपने आप को राजनीतिक रूप से भी मजबूत बना सकता है। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर आप पॉलिटिकल लेवल पर जाएंगे तो पॉलिटिकल लेवल पर भी आपको चीजें बड़ी दूसरी तरह की दिखाई देने लगेंगी, छोटे छोटे संगठन बनने लगे हैं, क्वाड की बात आप देख ही रहे हैं, आक समझौता भी हम लोगों ने चर्चा की, और भी इस तरह के छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं, ब्रिक्स के बारे में आप पढ़ते ही हैं, केवल ये मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया के दूसरे देशों में भी। तो अगर पूरी दुनिया एक है तो बड़े बड़े संगठन बनना चाहिए, और उसमें यूएनओ है ही, तो फिर ये छोटे छोटे संगठन क्यों बन रहे हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि नहीं, स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ग्लोबलाइजेशन को एक बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है, लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के शशि थरूर जी का आज एक लेख भी है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम है अंजलि गुप्ता और सुखराम, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।